दिन गुजर गए मेरे, अब मैं क्या करूं, बच गए लम्हात को कैसे जिया करूं, कैसे जिया करूं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीहीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं बुजुर्गों का मदनी चैनल और प्रोग्राम का नाम है अब मैं क्या करूं। आइए सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के रोज अल्लाह पाक के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। तीन शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साए में होंगे। अर्श की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, नंबर एक, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे। नंबर दो, मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। और नंबर तीन, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम अलैहिम रिदवान से इरशाद फरमाया, अभी इस रास्ते से तुम्हारे पास एक शख्स आएगा जो जन्नती है। इतने में एक अंसारी सहाबी आए, उन्होंने अपने जूते उल्टे हाथ में पकड़े हुए थे और उनकी दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा था। हाजिर बारगाह होकर सलाम अर्ज किया। दूसरे दिन फिर यही हुआ। जब तीसरे दिन सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हारे पास इस रास्ते से एक शख्स आएगा जो जन्नती है, तो फिर यही शख्स जो गुज़िश्ता दो दिन से आ रहा था तीसरे दिन भी तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन्होंने किसी तरह इस शख्स से इजाजत मांग ली कि मैं तीन दिन तक आपके घर पर मेहमान बनकर रहना चाहता हूं। उन्होंने इजाजत दे दी। अब ये तीन दिन तक उनके घर पर रहे। इनका गुमान था कि चले दिन में ना हो सका, हो सकता है रात को तवील कयाम करते हों, कसरत के साथ सजदे करते हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हाँ भाई, ये देखा कि जब ये सहाबी करवट बदलते थे, जिक्र करते थे, करवट बदलते वक्त भी अल्लाह का जिक्र फरमाते। जब तीन दिन और तीन रातें गोया गुजर गईं, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इस अंसारी सहाबी से इरशाद फरमाया कि मैं तीन दिन तक तुम्हें देखता रहा, तुम ऐसा क्या अमल करते हो कि नबी पाक मुसलसल तीन दिन तक तुम्हें जन्नत की बिशारत देते रहे? अल्लाह हू अकबर। उस अंसारी सहाबी ने जवाब दिया, मेरा कोई और अमल नहीं, बस यही है जो आपने देखा। हाँ, एक बात ये जरूर है कि मैं किसी भी मुसलमान के लिए अपने दिल में खोट नहीं पाता, और जो अल्लाह पाक ने किसी को दिया है उस पर हसद नहीं करता। तो हजरत अब्दुल्ला بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو بلندیاں بخشی اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا اور کسی مسلمان کے لیے حسد یا بغض نہ پالنا یہ اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک راضی ہوتا ہے اس سے، اور اصل طاقت اور عظمت دل کی صفائی میں ہے۔ اگر دل صاف ہو، حسد اور بغض سے پاک ہو، تو دل کے سکون کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح دل کی خرابی پورے جسم کو خراب کر دیتی ہے، دل میلا بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی صفائی بہت ضروری ہے، اور دل کی صفائی سے پورا جسم سکون محسوس کرتا ہے۔ دل صاف ہوتا ہے تو انسان کی سوچ اور عمل میں نکھار آتا ہے۔ بزرگ افراد کو بالخصوص چاہیے کہ دل کی صفائی کا خاص خیال رکھے۔ دوسروں کے لیے ناپسندیدگی، حسد یا بغض کے جذبات دل میں نہ لائیں۔ دل کی صفائی سے روح سکون پاتی ہے، اور انسان کی شخصیت میں نرمی، محبت اور خوش اخلاقی آتی ہے۔ یہ دل کی صفائی ہی ہے جو اللہ پاک کی رضا کا باعث بنتی ہے۔ بڑھاپے میں انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، لیکن دل کی صفائی انسان کی روح کو طاقت اور سکون دیتی ہے۔ الحمدللہ، مدنی چینل کے ناظرین، آج کے موضوع کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ دل کی صفائی، دل صاف رکھنا ہے۔ وجہ کیا ہوگی، سبب کیا ہوگا؟ وجہ اور سبب یہی ہوگا کہ جب میرا دل صاف ہوگا، الحمدللہ، اس کی بے شمار مجھے برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے دل کی صفائی کی، آئیے اس پر کچھ گفتگو سنتے ہیں۔ اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ ہم روز نہاتے ہیں، پھر بھی اگلے دن تک جسم میلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روز آنا، صبح گھر کی صفائی کی جاتی ہے، اور ہر ہفتے گھر کے جالے صاف کیے جاتے ہیں، لیکن گھر دوبارہ اسی پرانی حالت پر لوٹ آتا ہے، وہی گندگی، وہی جالے، اور کچھ دنوں میں چھتوں اور دیواروں پر جالے دوبارہ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نہانے دھونے، صفائی ستھرائی کرنے میں ناغہ نہیں کرتے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر نہانا چھوڑ دیں گے تو جسم میلا ہو جائے گا، اور ہمارے جسم سے بدبو آنے لگے گی۔ یوں ہی کچھ عرصے تک گھر کی صفائی اور جھاڑ پونچھ چھوڑ دینے کی صورت میں گھر رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لہذا ہم جسم، لباس اور گھریلو صفائی کو اہمیت دیتے ہیں، اور دینی بھی چاہیے۔ لیکن ایک اہم چیز ایسی بھی ہے جس کی صفائی کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں جاتی، اور وہ ہے دل۔ حالانکہ دلوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب ہم اسے صاف ستھرا رکھیں تو عبادتوں میں دل لگا رہتا ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نفل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تہجد کی بھی سعادت مل رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم دل کی صفائی سے توجہ ہٹا لیتے ہیں تو یہ میلا کچیلا اور काला पड़ने लगता है, फिर नफिल तो नफिल, फराइज में भी दिल नहीं लग रहा होता, गुनाहों का रुझान बढ़ जाता है और इनसे बचना दुश्वार हो जाता है, और दिल बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन लो, बेशक जिस्म में खून का एक लोथड़ा है, जब वो ठीक हो जाए तमाम जिस्म ठीक हो जाता है, और जब वो लोथड़ा बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। सुन लो, वो लोथड़ा दिल है। हम रोज सुबह उठते हैं, सबसे पहले मुंह धोते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, आईने में खुद को देखते हैं ताकि दुनिया के सामने अच्छे लगें। हमें ये गवारा नहीं होता कि कोई हमें गंदे कपड़ों या उलझे बालों में देखे, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि हमारा दिल कैसा लग रहा है? वो दिल जिसमें हसद, बुग्ज, तकब्बुर, रियाकारी और बदगुमानियां बसी हुई हैं। अफसोस कि हम जाहिरी सफाई को तो बहुत कुछ समझ बैठे हैं, मगर दिल की सफाई को नजरअंदाज कर बैठे हैं। हालांकि अल्लाह पाक की नजर तो हमारे दिलों पर होती है, ना के चेहरे या लिबास पर। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक तुम्हारे जिस्मों और सूरतों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह पाक तो तुम्हारे दिल देखता है। यह मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इस हदीस पाक के तहत इरशाद फरमाते हैं, मालूम हुआ कि दिल अल्लाह पाक की नजर का मकाम है। ताज्जुब है उस शख्स पर जो जाहिर को सवारने का एहतमाम करे, अपना जाहिर धोए, मेल कुचेल से सुथरा करे ताकि लोग उसके किसी ऐब को ना देख सकें, मगर दिल की सफाई का एहतमाम ना करे जो अल्लाह पाक की नजर का मकाम है। अल्लाहु अकबर। हजरत शेख सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला ने क्या खूब फरमाया कि अगर नहाने धोने से रब्बे करीम मिलता तो मछलियां सबसे ज्यादा रब्बे करीम का कुर्ब पा लेती। अगर रब्बे करीम अच्छे बाल बनवाने या बाल बढ़ाने के जरिए मिलता तो भेड़ बकरियों के बाल ज्यादा होते हैं, वो रब्बे करीम की ज्यादा करीब होती। मगर हकीकत यह है, रब्बे करीम उनको मिलता है जिनकी नीयत सच्ची और दिल पाक होता है। आज से अज्म करें, जिस तरह हम जाहरी सफाई का ख्याल रखते हैं इसी तरह दिल को भी साफ रखेंगे। हसद, कीना, तकब्बुर और रियाकारी को निकाल फेंकेंगे और मोहब्बत, इखलास, सच्चाई और आजिजी से दिल को सजा लेंगे। हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह कीमिया सादत में फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अनु से इरशाद फरमाया, ए मेरे बेटे अनस, अपना सीना मुसलमान के कीने से पाक रखा कर, क्योंकि ये तेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी अपना दिल मुसलमान के कीने से पाक रखने की तौफीक अता फरमाए। हमने इतने फजाइल सुने, इसकी बरकतें सुनी, अच्छा अगर सफाई दिल की ना हो, इसका नुकसान कितना ज्यादा होगा। अगर किसी आईने पे गर्द जम जाए तो उसमें अपना चेहरा साफ नजर नहीं आता। इसी तरह जब दिल पर गुनाहों की गर्द जम जाती है तो अच्छे बुरे की तमीज खत्म होने लगती है। दिल जब गुनाहों से सियाह और जंग आलूद हो जाता है तो इंसान की जबान से भी कड़वाहट निकलती है, आंखों से भी बेहयाई फूटती है और अमल से भी बदअमली जाहिर होती है। ऐसे दिल के साथ जिंदगी सिर्फ बोझ बनती है, सुकून नहीं। यही जंग आलूदगी फिर जाहिरी और बातिनी बीमारियों की शक्ल में इंसान की दुनिया और दीन को बर्बाद करने लगती है। दिल की गंदगी की वजह से इंसान जाहिरी और बातिनी बीमारियों का शिकार हो जाता है। जाहिरी बीमारियों में नमाज छोड़ना, दूसरों की दिल आजारी करना, दूसरों के हुकूक जाया करना, बड़ों की बेअदबी करना, झूठ, गीबत, चुगली और लड़ाई झगड़े करना हमारी अमली जिंदगी को तबाह कर देती हैं। जबकि बातिनी बीमारियां तकब्बुर, हसद, बदगुमानी, रियाकारी, बुग्ज, हुब्बे जा और हिर्स वगैरह हमारे जहनी सुकून को तबाह कर देती हैं। जबकि ये दोनों बीमारियां कब्र और आखिरत में भी सख्त अजाब का सबब बन सकती हैं। तो ये सब कब होता है? जब दिल मेला होता है। हम अपनी अना के चक्कर में रहते हैं, कुछ भी हो जाए मेरी अना को ठेस नहीं लगनी चाहिए। और दिल में इतना बुग्ज, हसद और तकब्बुर भर लेते हैं, कोई लाख हदीसें सुनाए, कोई लाख हमें फजाइल बताए सिला रहमी के, मुसलमानों के साथ खैरखाई के, लेकिन हम जिससे एक दफा बिगड़ जाए, वो दे जब मैं एक दफा जिससे बिगड़ जाऊं तो मैं बिगड़ जाता हूं, तो ये कोई कमाल ना हुआ? ये आपका जवाल है, ये कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि बंदा अजजी करे, वो माफी मांगने आया आप उसको माफ कर दें। हम अपने रब से भी तो यही तवक्को रखते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए। अगर कोई शख्स खता की माफी मांग दे आया है हमारे पास तो माफ कर दें। हम कैसे हालात में हो गए? दूसरे तो दूर की बात, बाजों का सगा बेटा सामने खड़ा है, सगी बेटी मां के सामने खड़ी है, भाई भाई के सामने, बहन बहन के सामने, लेकिन माफ करने को तैयार नहीं। वजह क्या है? ये दिल की सख्ती है, दिल की सफाई नहीं। अगर दिल की सफाई होती तो ये नौबत ही ना आती। एकाश हम अपने दिल को साफ रखने में कामयाब हो जाएं। अच्छा, दिल कैसे साफ रखें? आइए बुजुर्गों का मदनी चैनल देखने वाले नाजरीन, प्रोग्राम अब मैं क्या करूं में अब हम दिल कैसे साफ रखें यह भी सुन लेते हैं। जिस तरह जिस्म में गंदगी और मेल कुचेल दूर करना जरूरी है, इसी तरह दिल की गंदगी यानी हसद, कीना, बुग्ज, गफलत और गुनाहों की सफाई भी लाजमी है। आइए सुनते हैं दिल को कैसे साफ रखा जाए ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हों। दिल की सफाई करने और गंदगी दूर करने के लिए तिलावत कुरान और मौत को कसरत से याद करना बेहतरीन अमल है। और यह सिखाया किसने है, बतलाया किसने है? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को पानी पहुंचने से जंग लग जाता है। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी सफाई किस चीज से होगी? फरमाया, मौत की कसरत से याद और तिलावते कुरान से। इसके साथ साथ अल्लाह पाक की बारगाह में हमें सच्चे दिल से तौबा करनी है। क्यों? कि दिल की गंदगी साफ करने का पहला कदम तौबा और इस्तिग़फ़ार है। कसरत से अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे तो दिल की सफाई बहुत अच्छी हो जाएगी। और कैसे होगी कि दिल की सफाई के लिए जिक्रुल्लाह बहुत जरूरी है। दिल में दूसरों के लिए कीना और बोझ को खत्म करना भी दिल की सफाई का एक जरिया है। और हमें अल्लाह पाक से दुआ भी करनी चाहिए कि वह हमारे दिलों को साफ करे और हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर गुनाह करने वाला तौबा करे, बख्शिश तलब करे तो दिल चमक जाता है। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ उसी वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करें जब हमें अपनी किसी गुनाह का पता चल जाए, बल्कि हमें चाहिए कि तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें, रोज अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपने रब से बख्शिश तलब करें। हम जितना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करेंगे उतना ही हमारा दिल उजला और चमकदार रहेगा। दिल उजला रहेगा तो इबादत में लज्जत और सुरूर भी मिलेगा और ज़ौक और शौक भी बढ़ेगा। जिस्म और लिबास की सफाई अगर शख्सियत को निखारती है तो दिल की पाकीज़गी हमारे आमाल में निखार लाती है, हमारे किरदार को निखारती है। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार का एक ज़बरदस्त फ़ायदा ये भी है कि इसकी बरकत से ज़िंदगी की नाहमवारियाँ और दुश्वारियाँ आसान हो जाती हैं। जैसे अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता रहता है अल्लाह पाक उसके लिए हर तरह की तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना दिल साफ रखने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिही वसल्लम।
दिन गुजर गए मेरे, अब मैं क्या करूं, बच गए लम्हात को कैसे जिया करूं, कैसे जिया करूं।